ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विदेश में रह रहे नेपाली को स्वदेश में वापस लौटकर उपयुक्त पेशा व्यवसाय में शामिल होने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आग्रह है। इस साल 60,000 लोग डेंगू रोग से संक्रमित हो सकने का रोग नियंत्रण महाशाखा का अनुमान। गैर कानूनी रूप में क्रिप्टो कारोबार में शामिल होने के अभियोग में 6 चीनी नागरिक सहित 52 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भारत के हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 30 लोगों की मौत, 34 लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्पेन स्थित प्रवासी नेपाली मंच के पदाधिकारी और प्रतिनिधि के साथ अंतरक्रिया किया। स्पेन के सेविया में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए वित्त सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अभी मेड्रिड में रहे प्रधानमंत्री ओली के साथ नेपाली दूतावास में हुए भेंट में मंच के पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व में नेपाल में हो रहे विकास और समृद्धि के यात्रा के सफलता की कामना किया। प्रधानमंत्री ओली ने विदेश में सीखे हुए ज्ञान, अनुभव और पूंजी को स्वदेश के विकास समृद्धि की ओर प्रयोग करने का काम चल रहा है, इसलिए नेपाल में लौटकर उपयुक्त पेशा व्यवसाय में लगने का आग्रह किया। प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति ने नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2081 के संबंध में विज्ञों का सुझाव लिया। आज समिति के सिंहदरबार में हुई बैठक में हवाई विज्ञ डॉ दीपक प्रकाश बास्कोटा ने कहा कि नेपाल के हवाई सेवा को संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतर्गत न होकर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय अंतर्गत रखना चाहिए। पहले हवाई मार्ग से चिट्ठी पत्री लाए और भेजने का काम होता था, इसलिए हवाई सेवा को संचार मंत्रालय अंतर्गत रखा गया था और नेपाल में पर्यटन आगमन होने के बाद पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रखा गया। ये बात हवाई विज्ञ बास्कोटा ने कहा। और अब हवाई सेवा से पारवहन का काम होता है, इसलिए उसी मंत्रालय अंतर्गत रहने के हिसाब से कानून बनाने का सुझाव दिया। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत महिला तथा सामाजिक मामला समिति द्वारा संगठित अपराध के रूप में मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियंत्रण एन 2064 के क्रियान्वयन अवस्था के बारे में अध्ययन की जाएगी। आज समिति की हुई बैठक से बेचबिखन तथा उच्च जोखिम में रहे तथा बेचबिखन तथा ओसार प्रसार में हुए पीड़ितों का न्याय में पहुंच का सुनिश्चितता करने के उद्देश्य से इस कानून के क्रियान्वयन के अवस्था के बारे में अध्ययन की जाएगी। ये जानकारी समिति की सभापति किरण कुमार शाह ने दी। समिति ने एन की स्थिति, उसका असर, प्रभाव, लगायत के विषय के आधार पर एन क्रियान्वयन का मापन होगा। गैरकानूनी रूप में डेटिंग ऐप तथा क्रिप्टो कारोबार में संलग्न होने के अभियोग में 6 चीनी नागरिक सहित 52 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके सार्वजनिक किया है। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो से खटे पुलिस की टोली ने उन लोगों को ललितपुर महानगर पालिका 4 दमकल चौक स्थित एक घर भाड़ा में लेकर सोशल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी दर्ता करके गैरकानूनी रूप में कॉल सेंटर तथा मेट्रो डेटिंग ऐप संचालन करने की अवस्था में गिरफ्तार किया है। उस कंपनी के शाखा के रूप में काठमांडू महानगर पालिका 13 चागल स्थित एक घर भाड़ा में लेकर विभिन्न नेपाली युवतियों को लोभ लालच देकर डेटिंग ऐप मार्फत ऑनलाइन डेटिंग स्कैम तथा क्रिप्टो कारोबार करते हुए 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने दी। उन लोगों के साथ से स्रोत नहीं खुले ₹13,99,950, लैपटॉप 7 थान और मोबाइल 54 थान बरामद किया गया। ये जानकारी पुलिस ने दी। गिरफ्तार होने वालों में से 6 चीनी नागरिक ऊपर और भौतिक मुद्रा स्थित मुकदमा दर्ज की गई है और अन्य 46 लोगों के ऊपर और अनुसंधान शुरू किया गया है। ये जानकारी पुलिस ने दी। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने कहा कि विदेशी भूमि में श्रम करने वाले नेपाली श्रमिक का स्वामित्व राज्य को लेना होगा। आज परखी नेपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधन करने के दौरान मंत्री भंडारी ने कहा कि किसी भी माध्यम से विदेशी भूमि में जाकर काम करने के बावजूद भी उस नेपाली नागरिक का स्वामित्व राज्य को लेना होगा। उन्होंने कहा कि अभी वैदेशिक रोजगार के नाम पर एक नेपाली दूसरे नेपाली को ठगने की घटना प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ठग बिचौलिया और एजेंट को तह लगाने का एक द्वार प्रणाली मार्फत सेवा प्रदान करने के लिए मंत्रालय मेहनत कर रही है। नेपाली कांग्रेस की जारी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में नेताओं ने पार्टी को संवैधानिक तरीके से संचालन करने और सहयोगी संगठनों को सक्रिय बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व का ध्यान आकर्षित कराया है। आज की बैठक में बोलने वाले अधिकांश नेताओं ने कहा कि पार्टी का संचालन संविधान कानून और प्रक्रिया से बाहर हो रहा है, जिससे लोकतंत्र पर बढ़ती चुनौतियों का सामना करने में पार्टी असमर्थ हो रही है। इसी तरह नेताओं ने जनभावना और कार्यकर्ताओं की आवाज को समझकर पार्टी का संचालन करने, पार्टी के भीतर गुट उपगुटों का प्रबंधन एक एकजुटता बनाने, सहयोगी संस्थाओं में असंवैधानिक तरीके से अधिवेशन कर नई नेतृत्व टीम के साथ उन्हें सक्रिय बनाने और पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठकों को नियमित बनाने के लिए भी नेतृत्व का ध्यान खींचा है। पिछले सोमवार असार 16 से सानेपा में जारी कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में नेताओं ने बोलने का क्रम जारी है। बैठक कल आसार 20 गते शुक्रवार सुबह 11 बजे पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानेपा में फिर से होगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संखुआ सभा के खादबारी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 माने भज्यांग में 15 सैयाओं वाला खादबारी नगर अस्पताल संचालन में आया है। पूर्व में स्वास्थ्य चौकी को स्तरोन्नति करके खादबारी नगरपालिका ने एक स्थानीय तह एक अस्पताल नीति को कार्यान्वयन किया है। यह जानकारी नगर प्रमुख महेश थापलिया ने दी। कंचनपुर और गुलमी जिले को आज पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषित किया गया है। कंचनपुर के सभी 9 स्थानीय तहों पर 6 महीने से 15 महीने तक की आयु के बच्चों ने आवश्यक टीके प्राप्त कर लिए हैं। इस आधार पर आज औपचारिक रूप से जिले को यह दर्जा दिया गया है। कंचनपुर स्वास्थ्य कार्यालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकारी ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि जिले में जन्म से 15 महीने तक की आयु के 8935 बच्चों ने पूर्ण टीकाकरण प्राप्त कर लिया है। इसी तरह गुलमी जिले को भी आज ही पूर्ण टीकाकरण दिगोपना सुनिश्चितता प्राप्त जिला घोषित किया गया है। साथ ही ललितपुर महानगर पालिका को भी पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित स्थानीय स्तर घोषित किया गया है। इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा ने इस वर्ष लगभग 60,000 लोगों के डेंगू से संक्रमित होने का अनुमान महाशाखा ने लगाया है। अगले 4 महीने को डेंगू संक्रमण का सार्वजनिक जोखिम भरा समय के रूप में चिन्हित किया है और सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। महाशाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विज्ञों ने बताया कि डेंगू से होने वाली मानवीय क्षति को रोकने के लिए मच्छरों की प्रजनन प्रणाली को नष्ट करना सबसे सरल और प्रभावकारी उपाय है। धनुषा के जनकपुर धाम स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मणि मंडप क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। संघीय सरकार द्वारा 18,91,00,000 रुपए से अधिक की लागत में जनकपुर धाम के मणि मंडप सहित 5 स्थलों का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय गौरव तथा परियोजना के रूप में विकसित किए जा रहे सिद्ध बाबा सुरंग मार्ग में इन्वर्ट निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत पालपा जिले के तिनाव गांव पालिका 3 दोभान क्षेत्र में निर्माणाधीन इस सुरंग की कुल भौतिक प्रगति 56.3% तक पहुंच चुकी है। यह जानकारी सुरंग मार्ग आयोजना कार्यालय की इंजीनियर सविता ग्यवाली ने दी। नारायणघाट बुटवल सड़क खंड के अंतर्गत दुम्बी बास स्थित बिनई खोला का पुल आज से यातायात के लिए खोल दिया गया है। सड़क आयोजना पूर्वी खंड के प्रमुख ईश्वर बहादुर रिजाल के अनुसार आज सुबह 11 बजे से नए पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंध एवं राजस्व विभाग के विशेष सचिव डीसी राणा ने बताया कि बारिश से अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है और 34 लोग लापता है। डीसी राणा ने बताया 19 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून आया था, इसके बाद लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को मंडी जिले में 10 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि 29 और 30 जून को पूरे क्षेत्र में भारी बारिश हुई जिससे काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों से बादल फटने और तबाही की खबर आई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी में बाढ़ आ गई है, इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश में रह रहे नेपाली को स्वदेश में वापस लौटकर उपयुक्त पेशा व्यवसाय में शामिल होने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आग्रह। इस साल 60,000 लोग डेंगू रोग से संक्रमित हो सकने का रोग नियंत्रण महाशाखा का अनुमान। गैरकानूनी रूप में क्रिप्टो कारोबार में शामिल होने के अभियोग में 6 चीनी नागरिक सहित 52 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भारत के हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 30 लोगों की हुई मौत, 34 लोग हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।